नमस्कार ब्रह्म कुमारीज के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ये विशेष पेशकश है बी द चेन सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और पिछले कई दिनों से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। पिछले एक महीने से जो हमने एक छोटी सी कोशिश की थी कि हम आपके सजेशंस और फीडबैक्स को लेकर हम आप तक रीच आउट कर सकें, उसकी कोशिश में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आप दोस्तों की बदौलत आज हम आपके घरों तक पहुंच पा रहे हैं और आपके दिलों के दरवाजे तक दस्तक दे सकते हैं। और आप अपना दिल खोलकर बेझिझक बहुत सारे सवाल पूछते हैं, अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते हैं और आपके अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी हमें सुनने को मिलते हैं। और हर दिन इस बदलाव के दौर में जो मदद हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम छोटे छोटे हिस्से आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी और राजयोगिनी भाई बहने हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आपको सीधे उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं कि कैसे उनके आध्यात्मिक जीवन के सफर के स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स आपके लिए गाइडिंग लाइट बन सकती हैं। ये क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे का हफ्ता है, इस पूरे वीक के दौरान ब्रह्मा कुमारीज के दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज एक ऐसे ही विशेष हस्ती हमारे साथ जुड़े हैं, वो हैं ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज के जर्मनी सेवा केंद्रों और यूरोप के अनेक सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं और वो पिछले अनेकों दशकों तक भारत और देश विदेशों में ब्रह्मा कुमारीज की सेवा में अग्रसर रही हैं और लाखों लोगों के जीवन में उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया है। आज ये हमारा फॉर्च्यून है कि दीदी हमारे साथ हैं, तो मैं आप सभी की तरफ से दीदी का वेलकम करता हूं। सुदेश दीदी जी, स्वागत है आपका।
थैंक यू, मैं भी, इट्स माय प्लेजर। बहुत अच्छी बात है, मैं आप सब से मिल रही हूं, खुशी की बात है।
दीदी, पिछले कई दिनों से हमने बहुत सारे दोस्तों से बातचीत की, बहुत सारे हमारे दोस्त जो घर बैठे हैं, कुछ लोग अभी लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से इस बदलाव के वक्त को अपने अंदर ढालने की कोशिश की है, अपने आप को बदलने की भी उन्होंने कोशिश की है। और ये कहा भी जाता है कि वक्त जैसा आता है वैसे आदमी को, व्यक्ति को बदल जाना चाहिए, अपने आप को ढाल लेना चाहिए। मगर हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने इसकी कोशिश में थोड़ी देर से जागे, मगर फिर भी हमारी कोशिशें कामयाब हो रही हैं। कभी कभार हमें ये भी लगता है कि हमारी कोशिशें वापस जा रही हैं, मगर आप सभी लोगों का सपोर्ट है, आपका स्पिरिचुअल मार्गदर्शन है जो हमें आगे बढ़ाने में हिम्मत और मोटिवेशन दे रहा है। जो हमारे दोस्त प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर कोई शाउट आउट है आप सिर्फ जो हमें बताना चाहते हैं, तो भी आप यहां पर कमेंट सेक्शन पर इस वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और आप में से कुछ सवालों को जो आप पूछ रहे हैं उन सवालों को हम दीदी जी से आज पूछेंगे। फेसबुक पर या यूट्यूब पर, जहां पर भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वहां पर आप लाइव कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके प्राइवेट क्वेश्चन हैं, आपके ऐसे प्रश्न हैं जिस पर आप अपना नाम प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को सोशल मीडिया @brahmakumariz.com पर पूछ सकते हैं। दीदी, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहता हूं कि बदलाव का ये जो दौर है, इस बदलते हुए दौर में हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जमाना भले बदल जाए हमें नहीं बदलना चाहिए, तो ऐसे में क्या उन लोगों को आप ये कहना चाहेंगे कि नहीं, वक्त के साथ बदलना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहने चाहिए? हमें
अपने आप से उनको पूछना चाहिए कि वो संतुष्ट हैं जैसे हैं तैसे हैं। अगर संतुष्ट हैं और कोई संकल्प नहीं चल रहा है क्यों, क्या, कैसे, क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल मन में नहीं है, तब तो फिर जैसे हैं वैसे है ही हैं। और अगर ये क्वेश्चन है मन में चल रहा है, इसका मतलब वो स्वीकार नहीं करते कि हम बदलना चाहते हैं, या उम्मीद नहीं है परहैप्स बदलने की अपने आप में, तो तब तो आप उनके ऊपर ही है कि क्या करना चाहिए। अपने जीवन की दिशा अपने आप अपने हाथ में है, हमको खुश रहना है या जैसे है वैसे का वैसा ही रहना है।
तो ये चीज अपने आप में जांच लेने की जरूरत है कि हाँ, जैसा हम वैसे हैं वैसा सब ठीक चल रहा है, हम संतुष्ट हैं या नहीं। अगर हम संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हमें लगता है कि हाँ कुछ चीजें गड़बड़ है, तो कहीं पर उन चीजों को बदलाव की जरूरत है। ये जो समय बीता है दीदी, इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हों को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ा है। वो अपने कॉल ऑफ द ड्यूटी से जो उनके एक्सपेक्टेशन से उससे बियॉन्ड लोगों ने काम किया है, और लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 2-3 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट ये लोग एट अ लॉन्गर स्ट्रेच इनको अपने ड्यूटीज के लिए अपने कैपेसिटी से ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ दोस्त हैं जो हेल्थ केयर के फील्ड में काम करते हैं, जो फोर्सेस में काम करते हैं, पुलिस वगैरह में काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर अब जाकर ये चीज भारी पड़ रही है और वो थोड़े इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चीज के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कि आखिर कब तक चलेगा, जहां तक उनको बियॉन्ड द कॉल, जो उनके ड्यूटी का कॉल है उससे बियॉन्ड काम करना पड़ेगा, तो वो अपने आप को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में ये सवाल है।
अब ये तो जरूर है कि इमरजेंसी है ये, जैसे और हमको, मुझे, मैं समझ सकती हूँ कि हर एक आत्मा की, मनुष्य आत्मा की कैपेसिटी है, परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार बहुत नहीं दे सकते, आखिर भी कब तक ये क्वेश्चन रहेगा, आखिर भी कब तक ये ऐसा रहेगा, परंतु जब कोई और साधन नहीं बन रहा है तो ये सोचना चाहिए कि ये सेवा का समय है और दुआएं मिल रही हैं, जितना तन सेवा में दे रहे हैं उसके साथ साथ मन की शुभ भावना भी दे रहे हैं, समय भी समर्पण कर रहे हैं और परिवार की सुविधाओं का भी त्याग कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी सेवा करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं तो उनको दिल से नमस्कार करूंगी, सत्कार करूंगी, क्योंकि वो महान आत्माएं हैं, वो सेवा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो उनका दुआओं का भंडारा भर रहा है, वो महान आत्माएं हैं क्योंकि कार्य बड़ा महान कर रहे हैं। हाँ, बाकी अगर कोई और साथी जिनकी इस प्रकार की भावना हो, एक इसमें ऐड होवे, अपने आप को ऑफर करें, तो उनका काम थोड़ा कम हो जाए, परंतु मजदूरी में करना पड़ रहा है तो उसमें मजदूरी नहीं है ये, और मजबूरी भी नहीं है, परंतु ये एक प्रकार की दुआओं का खजाना जमा हो रहा है, इस भावना से करेंगे तो बीज बो रहे हैं। जिस समय बीज बोया जाता है उस समय कुछ नजर नहीं आता है, परंतु ये सेवा का, शुभ कर्म का वृक्ष जो इन्होंने लगाया है उसका फल इनको जरूर मिलना ही है और मिलता ही रहेगा। तो इसलिए मैं कहूंगी कि महान आत्माएं हैं, ऑर्डिनरी नहीं है।
ये बात बहुत अच्छी है आपने कही दीदी, कि ये जो चीज आप कर रहे हैं वो आप मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उस चीज को ऐसे देखें कि आप कुछ अच्छे कर्मों का बीज बो रहे हैं, इसके रिटर्न्स मिलेंगे और कई गुना मिलेंगे, शायद अभी नजर नहीं आ रहा है, अगर ये एटीट्यूड बना के रखें कि ये कब तक चलेगा, ये ना सोचते हुए कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, अपने आप को ये मोटिवेशन देते रहें तो ये बहुत अच्छी चीज लग सकती है। हमारे दोस्त फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवाल मैं लेना चाहता हूं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि लोगों को ये बताया गया पिछले कुछ दिनों से, हमारे दोस्त पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, और वैसे भी इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है कल, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के योगा कर रहे हैं, फिजिकल योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन भी सीख रहे हैं। हमारे एक दोस्त ने कल प्रश्न पूछा था जो कल हम कैरेक्टर में नहीं ले पाए थे दीदी। उनका प्रश्न ये था कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, चलो ये समस्या आ रही है इसके लिए मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा था, बट मैं ये सोच रहा हूं आखिर कब तक पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा, मतलब मैं नॉर्मल अपने थिंकिंग पैटर्न पे, रिलैक्स थिंकिंग पे जा सकता हूं, या कॉन्शियसली मुझे पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा करते रहना चाहिए।
अगर किसी को हीरो का व्यापार मिलता हो और उसमें कमाई ही कमाई हो, तो फिर वो हीरो का व्यापार छोड़ करके ऑर्डिनरी व्यापार करे तो वो तो फिर उनकी मर्जी की बात है। पॉजिटिव पावर न केवल पॉजिटिव है, पॉजिटिव में दुआएं, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही कहेंगे ना, गुड तो गुड ही है, तो गुड से बेटर बनेंगे, और जीवन में तो परिस्थिति, जब और कोई परिस्थिति आएगी तो पहले से उनकी फाउंडेशन इतनी मजबूत अथवा पक्की हो जाएगी, तो फिर ऊंची चीज में जाकर के नीचे क्यों जाएं, और ही समझे ना कि हम पॉजिटिव कब तक रहे। हाँ, उम्मीद होती है, कभी कभी अपने आप से हम निराश हो जाते हैं, परंतु निराशा की बात नहीं है, पॉजिटिव रहना ही है। और साथ साथ ये ध्यान रखना है कि खाली हम नहीं पॉजिटिव, और लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं। हाँ, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा। अभी गम के बादल तो है ही नहीं, ये थोड़े थोड़े गरजने वाले बादल, डराने वाले बादल है, परंतु डरना नहीं है, हम इनसे पार होते बादल से भी ऊपर हम जाएंगे। क्यों? कि बादल के ऊपर सूर्य सदा चढ़ा रहता है। बादल ऐसा महसूस कराता है कि सूर्य छिप गया है, परंतु वास्तव में थोड़ी वर्षा तपत को खत्म करने के लिए सामने आता है, परंतु फिर भी सूर्य चढ़ा रहता है। तो परिस्थिति आई है, उसमें स्वस्थिति को रखने से हम स्वस्थ रहेंगे, शुभ भावना रखने से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, दूसरी आत्माओं को सहयोग देने से हमारी अपनी जो कैरेक्टर है, हमारी अपनी योग्यता है, हमारे जीवन की वैल्यू बढ़ती है। यदि इस भावना से देखेंगे तो पॉजिटिव ना केवल खुद रहेंगे, औरों को भी पॉजिटिव बनाएंगे।
ये बहुत ही अच्छी बात है दीदी। मैं पहला प्रश्न लेना चाहता हूँ फेसबुक से, और फेसबुक से हमारे साथ पूनम अरोरा जी जुड़े हैं, और वो ये सवाल पूछते हैं कि हाउ टू मेक अवर माइंड बी हैप्पी एंड काम, हम अपने मन को खुश और शांत कैसे रख सकते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं।
अरोरा जी, अभी आप देखिए, जैसा आपका नाम है कूल काम पूनम, पूनम बताया ना? अच्छा, तो अभी बहन जैसे आप सोचे, हमेशा ही चंद्रमा जो है ना पूर्णमासी के दिन दूसरों के अंदर भी उमंग की लहर पैदा कर देता है। आप अपना नाम का ही स्मरण करेंगे ना, तो एकदम पॉजिटिव पूनम रहेंगे, पूर्णमासी रहेंगे। पूर्ण विराम देना है, पूर्णमासी का जैसा आपका नाम है, मैं आपके नाम की महिमा को थोड़ा आपको स्मृति दिला रही हूँ कि कोई भी बात है तो उसको फुल स्टॉप, क्योंकि जब हम चिंतन में जाते हैं, चिंता करते हैं, तो हमारी खुशी खत्म हो जाती है। और मन का कार्य है, वास्तव में मन शांति से संबंधित है, मन शांति पसंद करता है, कभी मन शांति पसंद नहीं करता, दुख कोई भी जीवन में नहीं चाहता। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी चीज है जो पास हो रही है और हमने उसको थोड़ा सा अपने पास पकड़ लिया, देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए। कहते हैं गुस्सा आ गया तो था नहीं पहले ना, मन अशांत हो गया, मन परेशान हो गया तो पहले था नहीं। तो इसलिए आप अपने ओरिजिनल स्वरूप, जो आपका गुण है, आपकी जो विशेषता है, उस विशेषता को ही साथ रखेंगे तो आपके अंदर वो आध्यात्मिक ताकत रहेगी, शक्ति रहेगी, तो आप सदा खुश रहेंगे। और ये ध्यान रखना है कि मैं जिस चीज को स्टॉक इकट्ठा कर रही हूँ, वो स्टॉक मेरे को भी एकदम संतुष्ट रखेगा। और अगर मेरे पास दुख अशांति बढ़ता चला गया तो मैं दूसरों को यही बांटूंगी, जिसके पास जो है वो दूसरे को वही देगा। इसलिए मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए ये सुख शांति का खजाना इकट्ठा करना है और वही मुझे दूसरों को देना है। मैं सुख शांति की देवी हूँ, ऐसा ध्यान रखो, बड़ा ऊंचा सुख शांति का देवता हूँ, ऐसा अपना लक्ष्य रखेंगे तो ये बाहर की बात नहीं है, सिर्फ बाहर का टाइटल नहीं है, ये तो मुझ आत्मा का, यानी आप आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है। क्योंकि मरने के बाद भी कहते हैं परमात्मा आत्मा को शांति का दान देना, इसका मतलब है शांति उनका स्वधर्म है। और जीवन में सबकी आशीर्वाद ये होती है, सुखी रहना है। हाउ आर यू, हैप्पी है ना, हमेशा खुशहाली पूछते हैं ना, इसका मतलब है कि वैसा ही खुशहाल हूँ, सदा निहाल हूँ, माला माल हूँ, अपने आप को इस प्रकार से आत्मिक खजाने को, आत्मिक गुणों को याद कराते रहेंगे तो आप देखेंगे कि अंधेरा, थोड़ा भी जो निराशा है वो खत्म हो जाएगी
जी। दीदी, इससे ही मिलता जुलता एक और सवाल है जो हमारे पास फेसबुक से कृतिका जैन पूछते हैं। कृतिका जी फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और वो ये सवाल पूछते हैं कि देयर इज नेगेटिविटी ऑल अराउंड सोशल मीडिया एंड लाइव्स एवरीवेयर इन दिस सिचुएशंस, हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी। नॉर्मल सिचुएशंस में हम चीजों को, जैसे आप कह रहे थे कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हम अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए कुछ चीजें इनपुट्स देना और ध्यान देने की जरूरत है, बट जब हम टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पे कोई चीज देखते हैं या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या कोई भी चीज जो हम आजकल देख रहे हैं, हमारे आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है और लोग बातें भी इसी चीज के बारे में कर रहे हैं, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, इतने केस निकल आए, तो इतना जब नेगेटिव एटमॉस्फियर हमारे आसपास है तो उस टाइम पे हमें पॉजिटिव और हैप्पी रहना कैसे पॉसिबल हो सकता है पूछते हैं।
तो जब हम बार बार किसी चीज, हमको जनरल अभी मालूम है कि ये सीजन है ऐसा समझे, अभी मतलब कोई रोक नहीं रहा, रोकने के बाद भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मानो बरसात पड़ रही है, अरे बहुत बरसात पड़ गई, बादल बहुत भरे हुए हैं, तो हम बोलते रहेंगे तो अब वो जो पड़ रही है वो तो पड़ ही रही है, तो उसमें मुझे क्या करना है। हम सिर्फ बोलते रहे और छतरी हाथ में ना लेने, बोलते रहे ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, और ब्लैंकेट ना ओढ़े तो दोष किसका। तो इसीलिए मुझे अगर अपने आप को सेफ रखना है तो मालूम है कि ये न्यूज तो जनरल है ही, हमको, मैं अपने आप को इतनी प्रोटेक्ट रखूं ताकि मेरे पास ये चीज अभी ना आवे और मैं हेल्दी रह करके दूसरी आत्माओं को हेल्दी बनाने में मदद कर सकूं। अगर मैं बार बार वो ये हो रहा है, ये कमजोरी आ रही है, यहाँ अटैक हो रहा है, यहाँ वार हो रही है, इसका मतलब है कि मैं वो बाहर की जो चीज है ना केवल जहां पर है उसको अपने घर में, अपने अंदर एरिया में ला रही हूँ, अपने परिवार में ला रही हूँ और उसके साथ साथ अपने अंदर बिठा रही हूँ, तो जो मेरे अंदर बैठ गई उसको निकालना फिर टाइम लगता है, मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मालूम है ये न्यूज है, ये खबर मिली है, तो खबर मिली है तो जो बेचारे चले गए हैं, जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, हमारा फर्ज है उन आत्माओं को शांति का दान देना और शक्ति के वाइब्रेशन भेजना, जिनके घर से वो सुन, किसका बच्चा गया है, किसका हस्बैंड गया है, किसका फादर गया है, तो मैं उन आत्माओं को शांति और शक्ति का दान दूं। अभी जरूरत किस प्रकार की है ये तो हुआ, मानो कोई गरीब है, ठंड में ठंड है, तो मैं अगर कहूँ ठंड में बेचारा ठीक सिकुड़ रहा है, ठंड में सिकुड़ रहा है, ठंड में मर रहा है, तो मेरे पास अगर ब्लैंकेट है तो मैं दे दूं, भूखा है तो मैं रोटी दे दूं, इससे तो और ही अच्छा है कि मैं अपनी आधी रोटी खा के आधी उनको दे दूं, पर मैं उसको और दूसरों को भी वही बातें सुना करके दुखी करूं और खुद भी दुखी हूं तो मैं सेवा तो नहीं कर रही हूं ना। हाँ, नेगेटिव है बराबर, पर नेगेटिव को मैंने 25 बार रिपीट किया तो 25 गुना बढ़ जाएगा ना, क्यों, एक फिलॉसफी, एक वाइब्रेशंस की बात है, जितने बारी हमने सोचा, मैं स्पिरिचुअल लॉ बता रही हूँ, जितने बारी हमने किसी चीज को सोचा उतने बारी उस सोच का वो बीज है, सोच एक बीज है, उस बीज में सौरव भरा हुआ है, तो वो मैं अपनी कॉन्शियस में प्लांट कर रही हूँ, लगा रही हूँ, तो वो मेरी कॉन्शियस में धीरे धीरे, फिर मैंने बार बार बोला, वो जैसे कि मेरी इमोशंस का वाइब्रेशंस उसको खाद दे रहा है, फिर मैंने वर्णन करते हुए उसको रिएक्ट किया, उसको ये क्यों, क्या, कैसे गई, तो मैं उसको धूप अथवा पानी दे रही हूँ, तो वो बढ़ता जाएगा ना, मैंने सहयोग तो नहीं दिया, तो मुझे अपनी ड्यूटी क्या करनी है। नेगेटिव दूसरे कर रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी दुख दे रहे हैं, तो मुझे ना वो लेना है नेगेटिव अपने अंदर और ना नेगेटिव फैलाना है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लें, तो नेगेटिव चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे पर्सनल बातचीत है, देखने में सिंपथी लगती है, हम बड़े सिंपथेटिक हैं, परंतु उस सिंपथी में हम उनकी जो असली संपत्ति है, हमने सिंपथी दिखाई, उनकी जो संपत्ति शांति की थी उसमें तो हम खलल डाल दी। तो कम से कम उनके पास हम शुभ भावना शुभ कामना तो देवे, उनको और कुछ नहीं दे सकते थे।
जी, ये जो बात आप कह रहे थे दीदी, बहुत अच्छी बात है कि हम सिंपति अपने दिखाने की कोशिश के चक्कर में किसी और की संपत्ति छीन लें, या ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये होता भी है। मैं पिछले दिनों हमारे किसी फ्रेंड के साथ डाइनिंग टेबल पे बातचीत कर रहा था, फिर बातों बातों में यही चर्चा निकल गई कि यहाँ इतने केसेस हो गए, वहां ये हो गया, ये हो गया। और मैंने कहा कि मैं इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता, हम खाना खाने बैठे हैं, कुछ अच्छी बातें करें, ये तो न्यूज में हो ही रहा है, बट हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप एक महीने बाद लॉकडाउन खुलने के बाद मुझसे मिल रहे हैं, तो इसमें हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और इसकी वजह से वो थोड़ा भूरा जरूर मान गए, बट फिर मैंने इस चीज को समझा कि चलो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, हम कुछ और क्रिएटिव और एक अच्छा पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। और आपने जो बात कही अभी कि हम सिंपथी दिखाने के फिराक में या सिंपथी दिखाने की कोशिश करने में किसी के मन की शांति को हर्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न मैं लेना चाहता हूं दीदी। हमारे एक दोस्त सवाल पूछते हैं, ये शिल्पा ठाकुर नाम है इनका और ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, ये इनका पर्सनल सवाल है, थोड़ा सेंसिटिव है। शिल्पा जी पूछते हैं, ओम शांति जी, मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है और मेरे हस्बैंड चाहते हैं फिर भी हम बात करते हैं, बट कभी वो अच्छे से बात करते हैं कभी नहीं करते। जब उनका मन होता है तो ठीक, मैंने बात करूं तो रिप्लाई नहीं देते, मुझे क्या करना चाहिए, ये पूछते हैं। ऐसा थोड़ा सेलेक्टिव वो रिएक्शन दे रहे हैं, जब उनको जरूरत होती है तब वो बात कर लेते हैं, जब ये अपने कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे रिप्लाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये शिल्पा जी पूछते हैं।
शिल्पा जी, मीठी बहन, अभी ये आपको, आप बहुत समय, जितने भी समय उनके साथ रही हैं और अभी भी संबंध तो है, ये सिचुएशन से आप मतलब पास गुजर रही हैं, तो अभी भावना यही रखिए कि उन आत्मा को इसका मतलब है कि अभी भी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है कुछ अच्छी बात कह करके अपने आप को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट में रख करके बात करना, अभी क्या इसका मतलब आपसे कुछ पूछ रहे हैं अथवा एक्सपेक्टेशंस है, इसका मतलब है कि अभी भी उनको ये भावना है कि मैं संबंध को जितना समय लंबा चला सकूं चलाऊं, या जो भी उनकी भावना हो, परंतु आप अपनी अगर सेल्फ रेस्पेक्ट में रहेंगी तो मानो उनको नहीं जरूरत है, नहीं बात की है तो ठीक है ना, मेरी संपत्ति तो मेरे पास है, मेरी जो शुभ भावना है वो मेरे पास है, किसी प्यासे को पानी की जरूरत है तो नलका खोल के पी लेगा, अब प्यास नहीं है बुझी हुई है तो गिलास होते हुए भी नलका खुला होते भी कोई नहीं लेगा, तो हमारा आपका शुभ भावना का शुभ कामना का अथवा ये कहें कि थोड़ा मर्सी का या थोड़ा कहें कि कुछ अपनी अटैचमेंट का द्वार खुला है, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशंस है कि वो हमेशा ये बना रहे, परंतु आप अपने आप को चेक करो कि आपका एक्चुअली लक्ष्य क्या है जीवन का, वास्तविक में रियलिटी में क्या चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रहे तो भी सुख नहीं है, और अगर एक दो के लिए संतुष्टि नहीं है तो भी तो सुख नहीं है, तो इसीलिए स्वमान एक ऐसी शक्ति है, आप अपने स्वमान में रहेंगे तो आपको उनकी किसी भी बात का अपमान नहीं रहेगा, और मैं ऐसी आत्मा, मैं शिव शिव शक्ति हूँ, शिल्पकार हूँ मैं, जैसे शिल्पा हो तो क्या करते हैं कि पत्थर को भी मूर्ति बना देती है, इसीलिए शिल्पा नहीं हो परंतु शिल्पकार हो, तो बेशक कोई आत्मा बनी पत्थर दिल भी हो, तो आप अपनी शुभ भावना शुभ कामना से अगर लक्ष्य यही है कि उन आत्मा का भी सुधार करना है कल्याण करना है, तो एक्सपेक्टेशन नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट, और अगर सिचुएशंस ऐसी है जिसमें आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को थोड़ा ठेस पहुंचती है तो एकदम डिटैच्ड ऑब्जर्व होकर के रहिए, साक्षी दृष्टा होकर के रहिए, जिसको जिस समय जिस चीज की जरूरत है अपने आप आएंगे, नहीं जरूरत है तो मेरे पास तो सब मेरा खजाना है ही है, इसलिए सोमान की सीट पर सेट रहिए।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि कभी कभार हमें खुद ही अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप से। और ठीक है, जब हम गिविंग एंड पे हैं तो जब हम दे रहे हैं तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के रिटर्न के देना सीखें। और आपने ये जो कहा कि आप अपने स्वमान के अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में स्थित रहें, बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो आप हर्ट महसूस नहीं करते क्योंकि आप अपने आप को ऑलरेडी उस रिस्पेक्ट के सिचुएशन में एक स्थान पर आपने सेट कर दिया है। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूं, निकिता परवानी जी का ये सवाल है और ये यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। इनका प्रश्न थोड़ा मैं रीफ्रेज कर देता हूं। उनका प्रश्न ये है कि जब हम लोगों से कुछ चीज के बारे में बातचीत करते हैं तो उनके कॉन्वर्जेशन से हमें ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। बातचीत ही हम उनसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक पे वो बातचीत कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये बात कर रहे हैं तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। कभी कभार ये भी लगता है कि लोग बहुत टॉक्सिक सी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो अच्छी चीजें नहीं है, और वो नेगेटिव सी चीजें बात कर रहे हैं और हम अपने आप को उस चीज से दूर हटाना चाहते हैं, तो हम कैसे हटाएं? हम उनको डिसरिस्पेक्ट भी फील नहीं कराना चाहते, जो चीजें हमारे काम की नहीं है, फायदे की नहीं है, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, नेगेटिव चीजें बात कर रहे हैं, टॉक्सिक चीजें बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज बात कर रहे हैं जिससे मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। उन चीजों से हमें बचना भी है, बट उन चीजों को, उन लोगों को हम हर्ट भी नहीं फील कराएं, ऐसे हम अपने आप को कैसे करा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को अनअवेलेबल करें इन चीजों से?
तो मीठी बहन, अभी इस ऐसे समय पर अगर मुझे, यानी जरूर है आपको चाहिए नहीं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आप उसके बदले में कुछ उनको जो प्रैक्टिकल में आप किसी चीज की आपके पास अनुभव है जिसमें आप अपने आप को शक्तिशाली बना करके रखा है, तो कुछ पॉजिटिव देना होगा ना। समझे, मानो हम ऐसे ही समझे कि उनको अभी ऐसा लगता है कि वो आप पर निर्भर कर रही हैं, जो भी आपसे बात कर रहे हैं कुछ आपसे सपोर्ट लेने की भावना है, अथवा कुछ आपको अपना कूड़ेदान खाली कर करके अपने आप को खाली रहेगा। तो मैं, आप ये ध्यान रखो कि मैं कोई कूड़ेदान नहीं हूँ, है ना, डस्टबिन नहीं हूँ, तो मेरा हृदय स्वयं स्वच्छ रहना चाहिए। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बेशक मैंने सुना आपकी बात, परंतु वास्तव में इसके बदले में क्या करना चाहिए, आपने फिर क्या सोचा है, उनसे ही पूछिए। अच्छा, ये बात जो आपको निराश कर रही है अथवा परेशान कर रही है, उससे बचने के लिए आपने कोई उपाय सोचा है, या फिर उसका कोई, जो कोई पॉजिटिव चीज उनको देंगे तो जरूर है आप जो है उनसे उस चीज से कनेक्ट ना कनेक्ट करके इफेक्ट नहीं होगा ना। तो फिर ये ध्यान रखना है, इस ड्रामा में ये सोल, ये आत्मा इस स्थिति से गुजर रही है, तो अब मैं आत्मा अगर उनको मदद करना चाहती हूँ तो कुछ उसको, उनको पॉजिटिव दूं, उनको उनके स्वमान में टिकाऊं, उनको उनकी कोई अच्छाई की बात याद कराऊं, या अपने जीवन में कोई इस प्रकार की परिस्थिति से पास हुई हो तो मैंने उसको कैसे पास किया, तो आप अपनी जो कुछ सफलता वाली बातें हैं, सक्सेस स्टोरी उनको सुनाओ, क्योंकि कुछ उनको रिप्लेसमेंट में चाहिए। इसका मतलब है कि आत्मा कमजोर है और कमजोर को कोई ना कोई वृक्ष का, किसी पिलर का सहारा चाहिए। तो आप अपनी मजबूती को नहीं छोड़िए, आप यही समझिए कि मैं एक पावरफुल वृक्ष हूँ, रक्षिता हूँ, निक्षिता नहीं हूँ परंतु रक्षक हूँ, रक्षा करने वाली हूँ, तो दूसरे प्रोटेक्शन से ही दूसरे का प्रोटेक्शन दे सकेंगे ना। इसीलिए कुछ अपनी विशेषता से उस समय ड्रेन होते हुए एनर्जी नहीं, किस वृक्ष पर फल है तो जरूर किसी के काम आएगा, तो जिसको फल चाहिए वो जरूर थोड़ा पेड़ को हिलाएगा ना, परंतु आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को साथ रखें तो आपको ड्रेनेज नहीं महसूस होगा, आपको लगेगा सहयोग मैं दे रही हूँ, आत्मा को थोड़ा शक्ति भर रही हूँ। तो इसीलिए अपनी आंतरिक शक्ति को और पॉजिटिव को के स्टॉक को थोड़ा बढ़ाइए अथवा कायम रखिए, तो उनको भी सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा और आपको भी संतुष्टि होगी
जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही अच्छी चीज आपने समझाया कि ऐसा नहीं समझे कि आप ब्रेन ऑफ हो रहे हैं, बट ये आपने आपको याद दिलाए कि मैं कोई डस्टबिन नहीं हूं और मैं कोई नेगेटिविटी अपने अंदर आने नहीं दूंगी। और ये भी चीज हम अपने आप को याद दिला दे कि हाँ हम पावरफुल हैं, हम पॉजिटिव हैं, तो ये चीज अपने आप को रिमाइंड करने से बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं। अब मैं हमारे दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि जो दोस्त हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी चीज दीदी जी से पूछना चाहते हैं जो आप आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में फेसबुक पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक्स, अपने शाउट आउट से जो भी चीज आप कहना चाहते हैं, कोई चीज आप सिर्फ शेयर ही करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं और हम स्क्रीन पे आपके कमेंट्स को शेयर करेंगे। स्क्रीन पर आप अपने कमेंट्स को पढ़ पाएंगे और कुछ सवाल हम दीदी जी से लेंगे। और साथ में हमारे कुछ दोस्तों ने पिछले कुछ दिनों से पूछा था कि आप मेडिटेशन का टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ाएं, ऑनलाइन हम मेडिटेशन सीख सकें। आपके इन फीडबैक्स को लेते हुए हर दिन शाम को 5:30 बजे ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर यानी facebook.com/ब्रह्मा कुमारीज और youtube.com/ब्रह्मा कुमारीज जो ब्रह्मा कुमारीज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर 15 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन इंग्लिश में होता है और आप सभी लोग वेलकम है। यू कैन ऑल ज्वाइन एंड मेडिटेट टूगेदर एट 5:30 इन द इवनिंग अकॉर्डिंग टू इंडिया टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 5:30 बजे से 5:45 के बीच में आप शाम को हर दिन मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप नए भी हैं, मेडिटेशन नहीं भी जानते हैं, तो भी आप जरूर बैठें और साथ में मिलकर आप मेडिटेशन सीख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है। और अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको आपको लगता है उनको मेडिटेशन की जरूरत है, आप जरूर वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सुदेश दीदी जी हमारे साथ हैं, मैं दीदी जी से अब एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। दीदी आप भारत के साथ साथ देशों विदेशों में, यूरोप, अमेरिका, ऐसा कोई खंड नहीं है, महाद्वीप नहीं है जहां आप नहीं गए हैं, और सेवाओं के फील्ड में आपको बहुत सारे जगह स्पीकिंग एंगेजमेंट्स में, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस के लिए आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हैं और हर जगह आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, बट पिछले कई महीनों से जैसे 3-4 महीने हैं लॉकडाउन हुआ है, तो आप भी भारत में रहे, आप ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर में फिलहाल बैठे हैं, तो आपको भी ये समय अलग लगा होगा, आपको भी एक नया समय मिला होगा। आपने इस समय को कैसे यूटिलाइज किया है, कैसे आपके इस समय के प्रति आपका रुझान कैसा रहा, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, ये जानना चाहेंगे।
हमने ये तो टाइम ऐसा कुछ कोई प्लान तो बनाया हुआ नहीं था, बिल्कुल हम जा रहे थे, एक्चुअली ऐसा ही कहेंगे कि हमारा एक ये सेवा का द्वार खुला है अथवा हमको अवसर मिला है ताकि हम अपनी भारत भूमि पर ज्यादा समय रह सके। अभी लास्ट 45 ईयर से भी ज्यादा हो गए हमको विदेश में रहते और विदेश में सेवा करते हुए, तो हम जब भी आए हैं तो 15 दिन 20 दिन रह करके फिर वापस चले जाते थे, या साल में दो बारी भी आते थे, 3 बारी भी आते थे, तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रहे। कभी भी इस 45 ईयर्स में हमको इतना ज्यादा समय रहने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी न केवल यूरोप की, परंतु हमारा जो ईश्वरीय सेवा केंद्र है वो 135 कंट्रीज में है और नियरली 100 कंट्रीज में हमारा जाना हुआ है, तो हमेशा सेवा पर टूर पर ही रहे हैं, एक फ्लाइट से दूसरी में, दूसरे से तीसरे मंथ तीसरी, ऐसा हमेशा। तो भारत में इतना रहने का सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, वहां की आत्माओं को परमात्मा की पहचान मिले, योग सिखाए, उनको भी आत्मिक बल मिले और भारत की जो राजयोग की शिक्षा है उसका ज्ञान मिले, भारत की सभ्यता का, इतनी ऊंची सभ्यता है, उससे उनको लाभ मिले। तो वो भावना यही थी कि उन सबको परमात्मा का संबंध, परमात्मा के साथ संबंध जुटे और अपने अंदर वो आत्मिक बल भरे। अच्छा, यहाँ पर जब अचानक रहने का बन गया, लॉकडाउन हो गया, तो रहना ही है और खुशी की बात है कि अपने घर में रह रहे हैं, परंतु फिर ये भी देखा कि परिस्थितियों में कई इस प्रकार के जो रोज की जो न्यूज होती थी उसमें फिर ये होता था कि यहाँ पर न केवल हम रहने के लिए ठहरे हैं, हमारी कुछ आंतरिक मन की शक्ति को दूसरी आत्माओं के भय को खत्म करने के लिए हमको कुछ मन की शक्ति के वाइब्रेशंस देने हैं। तो क्या हुआ कि हम सब अपने जितने भी अपने सेवा केंद्र माउंट आबू स्थान पर हम हैं, तो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अपने ही बड़े बड़े एक ही स्थान माउंट आबू में भी दो स्थान हमारे हैं, एक ज्ञान सरोवर है जो एकेडमी है और दूसरी जो है वो अपना माउंट आबू हेडक्वार्टर्स है, और नीचे बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पर हमेशा कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं। तो कहीं जाना के नहीं होता था लॉकडाउन की वजह से, परंतु कोई बात नहीं है, समय हमारा साथी है और इस समय मनुष्य आत्मा को शांति का बल चाहिए, तो हम रोज अपनी जो तपस्या थी योग तपस्या उसको थोड़ा बढ़ाया हम लोगों ने। हम ये कहेंगे कि हमने योग साधना का टाइम बढ़ाया, अमृत वेले थोड़ा ज्यादा समय बैठे, अच्छा थोड़ा घर के प्रांगण में ही वॉक करते, यही हमारी भावना रही कि जो आत्मा अभी इस समय कोई भी पीड़ा से दुख से चिंता से भय से परेशान है, उनके मन को शांति तब मिलेगी जब हम उनके पास जैसे फूलों में सुगंध भर जाती है तो ठंडी हवा वो अपनी सुगंध फूलों की लेके दूसरे के पास पहुंचाती है, सागर की शीतलता, सागर नहीं जाता पर ठंडी हवा शीतलता पहुंचा देती है, वातावरण बना देती है। तो हम मन से सेवा करें, हमारी अभी किसी से डायरेक्ट जाके बातचीत करने का सेवा का चांस नहीं है, तो हम लोगों ने योग तपस्या के और प्लान बनाए और आपस में क्लासेस रखी, जो मेरा पर्सनल यहाँ पर हुआ रहने का। तो मुझे क्योंकि ये शौक है ज्ञान की चिटचैट करना, आपस में थोड़ा पुरुषार्थ हमारी आत्मिक बल कैसे बढ़े, अनुभव के लेन देन हो, तो जो मेरा समय बीता मैं रोज सवेरे का क्लास तो यहाँ होता ही है, करवाते ही हैं, एक दिन हम कराते हैं, एक दिन हमारी साथ जो दीदी जी यहाँ रहती हैं वो कराती हैं, परंतु उसके अलावा दिन के टाइम में मैंने ऐसा ऑफर किया, बताया अपने मन की भावना शेयर की क्लास में कि हमारे पास समय है, तो बजाय और बातों के हम बातों में टाइम लगाए और अपनी एनर्जी को अननेसेसरी यूज करें, मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे एक ज्ञान की चिट चैट करूँ। तो हमने फिर प्रोग्राम बनाया, क्योंकि उस समय भी अबाउट 700 भाई बहन यहाँ थे जो लॉकडाउन के कारण यहाँ रुक गए थे, तो हमने ये अपनी सेवाएं दी कि मैं एक दिन यहाँ की जो समर्पण बहने हैं उनका उनके साथ बैठूंगी एक घंटा, दूसरे दिन जो है मैं यहाँ के जो भाई सेवा पर उपस्थित हैं उनके साथ बैठूंगी, इससे जिन सेवाधारी आए हुए हैं सेवा के लिए सहयोगी बन करके, क्योंकि 3,000-4,000 हमेशा कॉन्फ्रेंसेस के लिए होते हैं और वैसे तो जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो 30,000 भी होते हैं, तो वो सब कई तो रुक गए ना, तो अभी उनको उनको भी कुछ समय चाहिए, तो एक दिन उनके लिए रखा, एक दिन कुमारियों के लिए रखा, एक दिन भाइयों के लिए रखा, तो मेरा एक हफ्ता उसमें एक घंटा तो ऐसे चला जाता। और फिर ये बहुत सुंदर सौभाग्य मिला जो जूम पर हम लोगों ने आपस में दूर बैठे हुए, मैं इसमें जो कम से कम 25 देशों में तो क्लास कराया ही होगा हर दिन एक कंट्री में, और भारत वालों को जब पता चला तो बहुत सारे फोन भारत से भी आते रहे कि हमारे को तो टाइम का तो रहा ही, यानी उनको किसी का दोपहर का टाइम, विदेश वालों का भारत वालों का इवनिंग टाइम ज्यादा उनको पसंद है या फिर सवेरे का टाइम पसंद है। तो हमको इस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा, ये ईश्वरीय परिवार की सेवा और बेहद के समाज की सेवा का एक बहुत सुंदर लॉटरी मिल गई, मेरी तो लॉटरी मिल गई, तो इस प्रकार से मैंने अपना समय सफल किया।
बहुत अच्छी बात है दीदी, जो आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, जहां पर हम लोग फिजिकली नहीं पहुंच सकते, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी अपने आप को अडेप्ट करके समय के हिसाब से दूसरे टाइम जोन्स के हिसाब से सेट करके भी अपने आप को बिजी रखा, कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोचते हैं, जो स्पिरिचुअल स्टडी के बारे में आपने बताया कि आप इतने 45 इयर्स से आप विदेशों में रह रहे हैं और अनेकों दशकों से आप ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं से जुड़े हैं, बट फिर भी आपकी पर्सनल स्टडी के बारे में भी आपने हमारे साथ शेयर की। मैं समझता हूं अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं सिर्फ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डे टू डे लिविंग में हम क्या क्या चीजें करते हैं, कैसे हम अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आपने अपने एग्जाम्पल शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ और प्रश्न लेना चाहता हूं जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। फेसबुक से हमारे साथ रवि सरीन जुड़े हैं। रवि का प्रश्न है, वो कहते हैं, दीदी ओम शांति, मैं एक शॉपकीपर हूं, ऐसे वक्त में मेरे पास आए कस्टमर्स को किस टाइप के वाइब्स दे सकता हूं या अच्छी सेवा कर सकता हूं, ये पूछते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुला है तो शॉप्स वगैरह ओपन होने लगे हैं, कस्टमर्स भी गिन चुन के ही आते हैं, तो ऐसे टाइम पे उनको अच्छा वाइब्स महसूस हो, ऐसा वो डर डर के नहीं आए दुकानों में और उनकी अच्छी सेवा हो सके, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो पूछते हैं।
तो आप ये भावना रखें कि ये कस्टमर नहीं, मेरा भाई आया है मेरे पास, और ऑफ कोर्स जो चीज उनको चाहिए वो तो देनी है, परंतु मैं इन आत्मा को जो उनको भी कुछ जीवन में लॉस तो हुआ, हर एक को किसी न किसी तरीके से कमी तो पड़ी है, यानी चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण, चाहे संबंध के हिसाब से, चाहे परिस्थिति में कुछ न कुछ ऐसा फेस करना पड़ा, तो आप ये आत्मा है और ये मेरा भाई है, तो स्नेह से और ही, हम तो हमेशा यही कहते हैं जब भी कोई आए ना तो भाई जी बहन जी, तो उनको अपनापन महसूस होवे और ये समझिए कि हम एक पिता परमात्मा की संतान है, आत्मा है, तो उस समय आपके अंदर ये भावना हो कि मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो जो मैं इनको दे इनको चीज जो कस्टमर को सामान दे रहा हूँ ना, उसमें ये शांति प्रेम और सुख दे के दे रहा हूँ, ताकि वो जो चीज ये जो भी है वस्तु है उसको जो यूज करें, तो उसमें उनको एक प्रकार की ऐसी शक्ति मिले जो थोड़े में भी उनको संतुष्टि हो, क्योंकि अभी समय ऐसा आने वाला है कि जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, तो पहले से ही हम उनको अपने आप को भी तैयार करें, उनको भी तैयार करें।
बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सो मच।
वृत्ति कहने का मतलब है कि वृत्ति, दृष्टि और व्यवहार में दिव्यता भरी हुई होगी, तो हमारा उनके साथ फ्यूचर का संबंध भी बना रहेगा। उन आत्मा को सिर्फ चीज नहीं मिली, पर उन आत्मा को एक ऐसा अंदर का वाइब्रेशन शक्ति मिली जो वो अपने आप ही मैग्नेट की तरह खींच करके आएंगे, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेट को खींचता है।
जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। एक और सवाल है जो संद्र चंदू यादव पूछते हैं, संद्र चंदू इनका नाम है, और ये कहते हैं फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं दीदी हाइट, उनकी हाइट अगर छोटी है तो वो कहते हैं कि वाइफ को लोग बोलते हैं, वो अपने वाइफ के बारे में बता रहे हैं कि उनके वाइफ को लोग ये कहते हैं कि इतने छोटे हाइट की लड़की से आपने शादी क्यों की, और जब लोग उनको ऐसा बोलते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग मेरे वाइफ के बारे में ऐसा बोलते हैं, दीदी क्या करें जब लोग ऐसा बोलते हैं तो मैं बहुत लो फील करता हूं, ऐसा ये चंदू जी का सवाल है।
अच्छा चंदू भाई, हीरा छोटा होता है, हीरा जो है वो बड़ा नहीं होता है पर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, पत्थर जो है माउंटेन भी अगर हो जाए ना, एक हिल समझो पहाड़ी है ना, एक पहाड़ी की कीमत बहुत बड़ी, कितने मीलों दूर की भी होगा कोई खरीदे, और एक कोहनूर हीरा वहां पर हो तो वैल्यू किसकी ज्यादा। तो आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग आत्मा है, तो अगर वाइफ को ये बता रहे हैं कि आपने शादी की है तो संबंध शरीर का तो एक पार्ट प्ले करने के लिए है, संबंध शरीर के साथ शरीर में रहने वाली आत्मा से है, लंबा शरीर हो या छोटा शरीर हो, आत्मा निकल करके चली गई तो हस्बैंड या वाइफ शरीर को संभाल करके नहीं रखते हैं, इसका मतलब किससे संबंध है। तो वाइफ को कभी आप थोड़ा ध्यान से दिलाओ कि भाग्यवान आत्मा आपने किससे शादी की है, आपने शरीर से शादी की है या मुझसे शादी की है। तो शादी जो है संबंध है, रूहानी संबंध भी है, जिस्मानी संबंध भी है, आत्मिक संबंध है, एक दो के साथ रेस्पेक्ट का संबंध है, ट्रस्ट का संबंध है, उसमें शरीर की कोई बात नहीं है। शरीर को तो पहचान ही नहीं है, होती है कि वास्तव में गुण क्या है, अवगुण क्या है। इसलिए आप अपने स्वमान में रहिए, और जब आप अपने स्वमान में रहेंगे तो आपको अपमान की महसूसता नहीं होगी। क्यों? ये अपमान तब आता है जब अभिमान आता है, और अभिमान तब आता है जब देह का भान होता है। देह मैं लंबा हूँ, मैं सुंदर हूँ, तो क्या भरोसा शरीर, आज बहुत अच्छा शरीर है, कल बीमार हो जाने क्या गारंटी है, आज हेल्दी है, आज जो है किसी की हर अंग ठीक है, एक्सीडेंट होता है, डिसेबल बन जाते हैं, तो प्रकृति का कोई भरोसा तो नहीं है शरीर के किसी भी अंग का। इसीलिए आप स्वमान में रहिए कि आप आत्मा है, और आत्मा चैतन्य है, और वो परमपिता परमात्मा की संतान है। आप सर्वशक्तिवान सत्यम शिवम सुंदरम की संतान है, और आत्मा शालिग्राम है। मैं आपको एक सीक्रेट और बता दूं, आप आत्मा है तो जो ठाकुर जी हैं छोटे मोटे गोल से ही होते हैं, और हम ठाकुर जी की लोग इतनी पूजा करते हैं, और कोई अच्छे देवता से प्यार होता है ना, छोटी मूर्ति सी बना के ही दिल में रख देते हैं। जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी मूर्ति हो, बड़ी बड़ी मूर्ति पत्थर की होते हुए भी घर में रखेंगे तो छोटा ही रखेंगे। तो अगर किसी कोई दिल में समाता है तो शरीर से समाने की बात नहीं, प्यार शरीर का नहीं चीज है, वो तो आत्मा की चीज है। तो आप कभी अपने साथी को ये थोड़ा अपने स्वमान में रह के बताएंगे तो उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, और आपका स्वमान आपके साथ रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट्स भी कर रहे हैं, उन्होंने कितना एंजॉय किया आपके साथ इस बातचीत को, और कैसे आपके आंसर्स बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल और अप्लाई करने लायक हैं, जो सभी यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। और कुछ दोस्तों ने आपके साथ के पर्सनल अनुभवों को भी शेयर किया है। आशा सोबराज जी हैं जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कहते हैं कि सुदेश दीदी हैज टॉट मी सो मच सिंस 1983, वो आपको जानते हैं, और वो कहते हैं आई यूज्ड टू गो टू वॉर्म लेन पे जो ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर था, वो तब आपसे मिले हुए हैं, और अमेजिंग अर्ली मॉर्निंग्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू सुदेश दीदी, थैंक यू कहते हैं वो आपको, आपको याद भी देते हैं। बहुत सारे दोस्त भी ऐसे फीडबैक्स दे रहे हैं, उन्होंने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, आपके आंसर्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब दीदी हमारे पास समय ज्यादा सवालों के लिए नहीं है, उन दोस्तों का जिनका मैं सवाल नहीं ले पाया हूँ, हर दिन की तरह आज मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं सारे प्रश्न नहीं ले पाया वक्त की कमी के कारण, बट हम दीदी जी के साथ मेडिटेशन करेंगे, और कल इंटरनेशनल योगा डे है दीदी, तो मैं इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष में हमारे सभी दोस्त जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए योगा डे के उपलक्ष में ग्रीटिंग्स दें, शुभकामनाएं दें, और फिर उसके बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें मेडिटेशन के लिए गाइड करें।
योगा डे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये देखिए कितनी सुंदर बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने तो ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से, अपने दिव्य श्रेष्ठ संस्कारों के हिसाब से सारे विश्व में, क्योंकि अपना जो कॉन्सुलेट तो भारत का सब कंट्रीज में है, तो ना चाहते हुए भी ऑफिशियल ड्यूटी के हिसाब से भी अनेकों को योग सीखने की प्रेरणा दी। इसके लिए शुभकामनाएं और बधाई, तो मैं बधाई के वो पात्र हैं और सम्मान के पात्र हैं, परंतु हम सभी आत्माएं जो भी, योग का मतलब है परमात्मा के साथ संबंध, मेडिटेशन है अपनी आत्मा के साथ, अपने गुणों के साथ संबंध, और ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो है मेरा अपने शरीर के साथ संबंध। तो अब मुझे आत्मा का शरीर के साथ संबंध के साथ साथ मुझे आत्मा का अपने साथ भी संबंध होना चाहिए, उसका नाम मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन करते समय ये संकल्प रखना है, जब हम ओम शांति कहते हैं तो ओम आई एम कौन हूं मैं, शरीर नहीं, शरीर से न्यारी आत्मा हूं। और मुझे आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति है। उस शांति में शक्ति है, उस शांति में सच्चा आनंद है और सुख है। तो मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। तो ऐसे आनंद के लहरों के साथ योग करना है। तो हठ योग तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए है, पर मन को दुरुस्त करना है तो शरीर के साथ साथ जब आप योग के लिए बैठ रहे हैं तो लोटस आसन और लोटस कॉन्शियसनेस। तो लोटस का मतलब क्या है, कमल आसन, सुखासन, सुखासन बोलते हैं, लोटस आसन बोलते हैं। तो जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर कीचड़ से न्यारा रहता है, तो ऐसे मैं आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर से न्यारी डिटैच हूँ। वो शरीर में कीचड़, कमल कीचड़ से बाहर कीचड़ में है पर कीचड़ से ऊपर है। तो ऐसे में शरीर में रहने वाली आत्मा भक्ति के बीच में निवास कर रही हूँ और मैं अपने गुण से संबंधित हूँ। शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा। ऐसे अपने को आत्मा निश्चय करके सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज मन से कीजिए। मैं ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, गॉड इज लाइट। उनके पास सत्यता की लाइट है, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ की लाइट परमात्मा के पास है। ज्ञान के वो सागर हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटिया अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान को दूर करने वाले हैं। तो ऐसे ज्ञान सागर परमात्मा के साथ मैं अपना संबंध जोड़कर अपने अंदर वो परमात्म शक्ति ले रही हूँ। फिर और एक्सरसाइज, शीर्षासन, बैलेंसिंग इन द हेड चाहिए या बैलेंस ऑन द हेड? बैलेंसिंग ऑन द हेड तो कुछ मिनट्स के लिए कर सकेंगे, पर बैलेंस इन द हेड शीर्षासन करेंगे तो सिंहासन पर मैं बैठी हूँ, अकाल मूरत आत्मा हूँ। तो जो हम आसन कर रहे हैं ना, जो राजयोगा की पतंजलि योगा, पर भगवान ने गीता ज्ञान दाता ने जो योग के आसन सिखलाए हैं वो बड़े अद्वितीय हैं, बड़े श्रेष्ठ आसन हैं। तो हम जब योग में बैठते हैं तो मीनिंग सहित बैठते हैं, और मीनिंग सही होता है, यथारथ होता है, तो समय सकारत होता है, बीज में शक्ति होती है तो फल संपन्न रहता है। तो ये आत्मा का जो संकल्प है, ये बीज है, तो इस संकल्प को यानी बीज को गुण संपन्न बना करके बैठिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम मैं शुद्ध आत्मा